माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवदधरी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवदधरी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यमुना तीरा बन चमरी, तीरा बन चमरी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यमुना तीरा बन चारी, तीरा बन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचारी अष्टोत्तरशस्त्री श्रीमद्जवाइंद्रीस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रोसेस कॉन्फाउंडर आचार्य शिव दि होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम सिखो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताय भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी All glories to Simil devotees, all glories to Simil devotees, all glories to Simil devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. तो आज प्रबोधिनी एकादशी है। हर एकादशी को जैसा नियम है प्रभुपाल लीला में से पाठ करने का, तो हम प्रभुपाल लीला में से पाठ करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ भीष्म पंचक भी शुरू हो चुका है। भीष्म पंचक का मतलब क्या है कि कार्तिक के महीने के अंतिम 5 दिन, तो इसको जो है पंचक कहते हैं। पंचक का मतलब 5 दिन। लेकिन भीष्म जी का नाम कैसे जुड़ गया इसमें, तो इसकी कुछ घटना है जिसे हम सुनेंगे। भीष्म पंचक कहलाता है। पंचक का तो मतलब 5 दिन और कार्तिक के महीने के 5 दिन। तो कार्तिक के महीने के 5 दिन ये कब से शुरू होते हैं? एकादशी से। तो वैसे आज से शुरू होना चाहिए पंचक, लेकिन जो कल एकादशी थी उसमें दसवीं तिथि मिली होने के कारण कल एकादशी का उपवास नहीं किया गया। तो आज वैसे द्वादशी है, इसलिए लिखा है पक्षवर्धिनी महाद्वादशी। तो बहुत पवित्र है, आज के दिन उपवास करना बहुत फलदायक है। लेकिन पंचक शुरू हो चुका है कल से, क्योंकि पंचक का मतलब 5 दिन, और वो जो है जरूरी है कि वो कार्तिक के महीने के अंतिम 5 दिन होने चाहिए। तो पंचक व्रत जो है ये बहुत कठिन भी है और साथ साथ भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। भगवान की प्राप्ति तो सामान्य रूप से कई भक्तों को होती है, लेकिन विशेष प्राप्ति पंचक व्रत की, पंचक व्रत के द्वारा भगवान की कुछ विशेष प्राप्ति होती है जो कि सामान्य बात नहीं है। तो ये जो रहस्य है कि भीष्म जी ने पूछा भगवान कृष्ण से, जब भगवान कृष्ण दूत बनकर के आए कहां? हस्तिनापुर में कौरवों की सभा में। तो पांडवों के जो है भगवान दूत बने, भगवान के, भगवान पांडवों के मित्र बने, उनके बंधु और उनके संबंधी, मतलब क्या नहीं है, सब कुछ है। पांडवों के स्वामी भी हैं, पांडवों के सेवक भी हैं, दूत भी, सारथी भी, सखा, सब कुछ पांडवों के। और इतने जो है ना पांडवों से इनका जो है घनिष्ठ संबंध है कृष्ण का, कि उनके साथ सोते हैं, उनके साथ खाते हैं, चलते फिरते, जागते, हंसी मजाक करते हैं और गंभीर बातें भी करते हैं, सलाह मशविरा करते हैं, सब कुछ पांडवों के साथ है ना। तो भक्तों की तो कोई कमी नहीं है इस पृथ्वी में। कितने भक्त हैं भगवान के, पांडवों जैसे भक्त तो नहीं हो सकते हैं। तो भीष्म जी ने ये रहस्य पूछा कृष्ण से, जब कृष्ण ने मना कर दिया कि वो किसी के घर नहीं जाएंगे। यहां जब कौरवों की सभा में आए भगवान, तो विदुर जी के घर ठहरे और उन्होंने मना कर दिया कि मैं और किसी के घर जाऊंगा ही नहीं। सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे भी घर को पवित्र करो, तो भगवान ने सबको मना कर दिया। और कारण क्या बताया कि द्रौपदी का जो अपमान हो रहा था किसी ने विरोध नहीं किया। भगवान ने कहा किसी ने विरोध नहीं किया, द्रौपदी का जो अपमान हो रहा था एक व्यक्ति से जिन्होंने विरोध किया, कौन? विदुर जी। इसलिए विदुर जी के घर में ठहरे भगवान, और किसी के घर नहीं ठहरे। भगवान ने कहा किसी ने विरोध नहीं किया द्रौपदी का जो अपमान हो रहा था, इसलिए मैं किसी के घर नहीं ठहरूंगा, है ना। तो फिर भीष्म जी ने भगवान से जो ना अलग से ये रहस्य पूछा कि क्या कारण है पांच पांडव और द्रौपदी से आपका इतना जो निकट संबंध है, इसका कारण क्या है, इसका क्या रहस्य है। तो भगवान बताते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में क्या थी। वैसे ब्रह्म विवर्त पुराण में कुछ और भी जानकारी है द्रौपदी के बारे में, और वो क्या है कि भगवान के साथ जब सीता जी थी और रावण सीता जी का अपहरण करने के लिए आ रहा था, तो भगवान सीता जी से कहते हैं कि रावण तुम्हारा अपहरण करने आ रहा है, लेकिन वो तुम्हारा अपहरण क्या, तुम्हें छू भी नहीं सकता। और छोड़ने की बात क्या, तो मैं देख भी नहीं सकता है गलत नजरों से, वो तो भस्म हो जाएगा, तो फिर मेरी लीला कैसे होगी है? इसलिए मेरी आज्ञा से तुम अग्निलोक में जाओ। तो भगवान ने जो है ना सीता जी को अग्निलोक में भेज दिया, और अग्निदेव ने सीता जी की छाया से एक दूसरी सीता बनाई और राम के साथ बैठा दी। और ये जो रहस्य लक्ष्मण जी को भी पता नहीं था, लक्ष्मण जी उस समय कुछ कार्य से जंगल में गए थे लकड़ी लेने या कुछ, तो लक्ष्मण जी को भी रहस्य पता नहीं चला। और रावण ने छाया सीता का अपहरण किया है? और बाद में फिर जब रावण का वध भगवान करते हैं और फिर वो छाया सीता आती है भगवान राम के सामने, तो राम जो है चरित्र में संदेह करते हैं, ये तो सब लीला थी। और छाया सीता अग्नि में प्रवेश करती है, तो उस समय अग्निदेव ने फिर असली सीता ला करके राम को दे दी कि ये पवित्र है, है? और छाया सीता को दूर जंगल में छोड़ दिया, एकांत जंगल में छाया सीता। तो वो छाया सीता फिर तपस्या करती है और शंकर जी प्रसन्न होते हैं और शंकर जी कहते हैं वर मांगने के लिए। तो उसने जो है उसका कोई पति नहीं था, तो उसने फिर 5 बार शंकर जी से कहा, क्या, पतिम देही पतिम देही पतिम देही पतिम देही पतिम देही है? तो शंकर जी हंसे हंसे और कहे, कहते हैं कि तूने 5 बार कहा है पतिम देही, तो उसको 5 पति दूंगा। तो शंकर जी विनोदी स्वभाव के हैं, तो हंस करके बोले तुझे 5 पति दूंगा मैं। तो फिर अगले जन्म में वो जो है मथुरा में, मथुरा के जो राजा थे उनकी भोग पत्नी बनी ये द्रौपदी। तो ये जो रहस्य है ये पद्म पुराण में है। अब ये मैं दोनों कथाओं को जोड़ रहा हूँ, क्योंकि ब्रह्मवर्त पुराण में ऐसा लिखा है, अब वहां से फिर जो है इतनी लिखा है कि वो फिर अगले जन्म में द्रौपदी बनी शंकर जी के वरदान से। लेकिन पद्म पुराण में लिखा है कि द्रौपदी पिछले जन्म में ये थी। तो हम दोनों कथाओं को जोड़ने के लिए फिर ये मान रहे हैं कि छाया सीता जो है अगले जन्म में मथुरा के राजा की भोग पत्नी बनी। तो भोग पत्नी का कार्य क्या है, सभा में नृत्य करना और राजा का मनोरंजन करना। तो उस समय ये जो 5 पांडव थे ये 5 ब्राह्मण थे पिछले जन्म में है? और साथ साथ रहते थे और संगीतज्ञ थे, बड़े निपुण संगीतकार थे। तो इनकी इच्छा हुई कि राजा को हम अपना संगीत जो है सुनाएं और प्रदर्शन करें राजा के सामने। तो उस रास्ते पर वो लोग जो है अपना संगीत बजाने लगे जो रास्ता राजा के महल की ओर जाता था। तो रास्ते में जो जाते थे राजा के महल में, तो वो देखते थे इन संगीतकारों का और इनका संगीत भी सुनते थे। तो राजा को सूचना मिली, तो राजा ने इनको बुलाया। तो ये जो 5ों जो ब्राह्मण थे ये जब सभा में गए राजा की सभा में, तो जो द्रौपदी थी ना, उसका जो भी नाम था उस पिछले जन्म में, 5 पांडवों का भी अलग अलग नाम था, अभी तो मैं इसी नाम से मतलब संबोधन करूंगा। तो इन्होंने द्रौपदी को देखा, वो नृत्य कर रही थी, संगीत बजा रही थी, तो आकर्षण हुआ। और द्रौपदी ने, ये आज के दिन है, ये आज के दिन की बात है कि द्रौपदी ने जो है इनको इशारा किया कि पास में ही विष्णु मंदिर है, रात में मिलना है वहां पर। तो आज की जो रात है, यानी ये पहली रात थी एकादशी की, अगर इसको 5 दिन माने, एकादशी से अगर 5 दिन माने, तो पहली रात थी जो युधिष्ठिर हैं वो गए विष्णु मंदिर में और द्रौपदी ने नृत्य किया रात भर, और इन्होंने जो है रात भर संगीत बजाया भगवान की प्रसन्नता के लिए। अभी रात में जागरण हो गया, हालांकि आकर्षण था एक दूसरे से, लेकिन विष्णु की प्रसन्नता के लिए वो संगीत बजाते रहे और वो जो है नृत्य करती रही। और उन्होंने देखा कि वहां पर मंदिर में एक महात्मा बैठे हुए हैं, साधु महात्मा, उनमें कोई आकर्षण नहीं है, द्रौपदी के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, वो जो है ना भगवान के भजन में बैठे हैं, वो भी रात भर जाग रहे थे। और पंचक की विधि में क्या होता है, बहुत कठिन विधि होती है, 5 दिन और 5 रात बिल्कुल जागना सोना नहीं, और पहले दिन के अंत में थोड़ा सा गोबर लेना केवल सवेरे, फिर दूसरे दिन सवेरे थोड़ा सा गोमूत्र लेना, तीसरे दिन सवेरे थोड़ा सा दूध लेना, और चौथे दिन सवेरे थोड़ा सा दही लेना, और पांचवें दिन सवेरे थोड़ा सा घी लेना, यानी पंचगव्य। पंचगव्य का सेवन करना है पांच दिन लगातार, थोड़ा थोड़ा सवेरे के टाइम। तो युधिष्ठिर जो है उस महात्मा को देखते हैं तो बड़े प्रभावित होते हैं उस महात्मा से। तो उस महात्मा ने जो है थोड़ा सा गोबर लिया, थोड़ा सा गोबर खाया, तो युधिष्ठिर ने भी वो उनकी देखा देखी थोड़ा सा गोबर खाया, और देखा कि द्रौपदी में मतलब उनका कोई आकर्षण नहीं है, तो उन्होंने भी द्रौपदी से अपना आकर्षण छोड़ दिया और जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। अब दूसरी रात में भीमसेन आए विष्णु मंदिर में, उन्होंने भी संगीत बजाया, द्रौपदी ने नृत्य किया, और वो देखा कि वो महात्मा हैं, वो बिल्कुल निर्विकार हैं, तो प्रभावित हुए भीमसेन भी। और अगले दिन सवेरे थोड़ा सा उन्होंने गोमूत्र लिया, उन्होंने भी गोमूत्र लिया, और द्रौपदी से मन को हटा करके वो भी तपस्या करने के लिए चले गए जंगल में। फिर तीसरी रात में अर्जुन आए, तो उन्होंने विष्णु मंदिर में संगीत बजाया, द्रौपदी ने नृत्य किया, और महात्मा को देखा निर्विकार हैं, और सवेरे उन्होंने थोड़ा सा दूध लिया, तो अर्जुन ने भी थोड़ा सा दूध लिया और चले गए जंगल में तपस्या करने। फिर चौथे दिन नकुल आए विष्णु मंदिर में, रात भर संगीत बजाया, द्रौपदी ने नृत्य किया, और महात्मा की जो है अनुकृति में उन्होंने भी थोड़ा सा दही लिया और चले गए जंगल में तपस्या करने। और पांचवी रात में सहदेव आए, उन्होंने भी रात भर संगीत बजाया और द्रौपदी ने नृत्य किया, और सवेरे महात्मा ने थोड़ा सा घी लिया, उन्होंने थोड़ा सा घी लिया और चले गए। तो इस प्रकार से जो पंचक है वो पंचक व्रत कहलाता था, भीष्म पंचक अभी नाम नहीं पड़ा इसका, पंचक व्रत था। तो ये पंचक व्रत अनजाने में ही द्रौपदी और पांच पांडवों के द्वारा हो गया। रात भर जागरण भी हुआ भगवान की प्रसन्नता के लिए, कीर्तन और नृत्य हुआ। तो इस तरह से जो है इस व्रत के प्रभाव से, हालांकि हुआ था ये अनजाने में, कुछ समझे नहीं थे कि ये ऐसा कुछ नियम है, कोई ऐसा व्रत है, लेकिन अगले जन्म में फिर जो है ये पांचों ब्राह्मण क्या हुए, पांच पांडव हुए, और ये जो द्रौपदी है ये इनकी पत्नी हुई। और भगवान भीष्म जी को रहस्य बताते हैं कि ये रहस्य है कि पंचक का जो है इन लोगों ने जो व्रत किया था, इस कारण से मैं इनके इतने ज्यादा निकट हूं, इतना ज्यादा इनसे प्रेम करता हूं। तो फिर भीष्म जी से भगवान कहते हैं कि अगर तुम चाहते तो तुम भी ये पंचक व्रत करो, और इससे जो है ना आगे चल करके ये पंचक कहलाएगा भीष्म पंचक, तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। तो भीष्म जी ने पंचक व्रत किया, भगवान के कहने से भीष्म जी ने पंचक व्रत किया, और इसका परिणाम यह हुआ कि भगवान फिर उनके मरण शैया पर क्या करते हैं, 56 दिन लगातार भगवान खड़े रहते हैं उनके भीष्म जी के सामने। कितनी कृपा भगवान की। ये पंचक व्रत का जो ना ये फल था कि भीष्म जी पर भगवान ने इतनी कृपा की कि जब तक उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा, भगवान उनके पास खड़े रहे, सेवक की तरह उनको दर्शन देते रहे। तो ये जो है पंचक की जो विधि है वो मैंने बताई। तो ये कार्तिक महीने के पांच जो अंतिम दिन हैं ये बहुत ही पवित्र होते हैं। कार्तिक में कोई नियम बनाता है उनका पालन करता है तो कार्तिक 12 महीनों में सबसे ज्यादा पवित्र है ही है, उसका फल बहुत ज्यादा होता है। और ये पांच दिन जो है ना जो अंतिम है कार्तिक के, तो ये और ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ज्यादा पवित्र होते हैं। कोई व्यक्ति में और नियमों का पालन कर सकता है और कुछ श्रवण कीर्तन कर सकता है। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं प्रभुपाद लीलामृत से, अभी चल रहा है सैन फ्रांसिस्को में भगवान जगन्नाथ की स्थापना, ठीक है। तो भगवान जगन्नाथ की स्थापना कैसे हुई सैन फ्रांसिस्को में, बड़ी प्रसिद्ध घटना। श्याम सुंदर की पत्नी मालती को किसी स्टोर से जो है गुड़िया मिली, तो एक गुड़िया जगन्नाथ की गुड़िया ले आई पुतली, और प्रभुपाद जी को दिखलाया। वही एक इंच दो इंच की पुतली थी, और प्रभुपाद जी ने प्रणाम किया और फिर बताया कि जगन्नाथ जी हैं, और फिर वो तीनों ले आए। और सौभाग्य से मालती के पति ही जो श्याम सुंदर थे वो बड़े ही थे, तो प्रभुपाद जी ने जैसे बताया तुरंत उन्होंने जगन्नाथ जी के, जगन्नाथ बलि सुभद्रा के, तो उसी अनुपात में बड़े बड़े विग्रह तैयार कर दिए। अब ये दिन है 26 मार्च का, 1967 होगा मेरे ख्याल से, 1967 26 मार्च लिखा है। तो ये चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस था, जिस दिन प्रभुपाद जी जगन्नाथ जी की स्थापना करते हैं और उत्सव मनाते हैं शाम को। शाम को मतलब चैतन्य महाप्रभु के जन्म के समय पर जगन्नाथ जी की स्थापना करते हैं सैन फ्रांसिस्को में। भगवान चैतन्य के आविर्भाव के दिन मार्च 26 को प्रभुपाद ने कहा कि सवेरे की बेला में सब भक्त मंदिर में एक साथ रहेंगे। ये सवेरे का टाइम है। भगवान चैतन्य के विषय में पढ़ेंगे और कीर्तन करेंगे, और संध्या समय भगवान जगन्नाथ की प्राण प्रतिष्ठा के लिए समारोह होगा। जिस समय गौर पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है, चंद्रोदय तक व्रत रखने के बाद वे प्रसाद से अपना व्रत समाप्त करेंगे। जब उस दिन सवेरे श्रील प्रभुपाद मंदिर में गए तो उन्होंने भक्तों द्वारा की गई तैयारी देखी। विग्रह के लिए नई वेदी कमरे के पिछले भाग में, जिसके ऊपर पहले प्रभुपाद के बैठने की जगह थी, बनाई गई थी, और उनके बैठने का स्थान अब कमरे में दाईं ओर दीवार से सटाकर बना दिया गया था। अपने स्थान से वे भगवान जगन्नाथ के विग्रह को आसानी से देख सकते थे। वेदी रेड वुड का एक साधारण पटरा था, जो जमीन से 7 फुट की ऊंचाई पर दो मोटे लकड़ी के स्तंभों पर टिका था। विग्रह के स्थान के ऊपर एक चंदोवा टंगा था। वेदी के नीचे हरिदास कृत एक चित्र रखा गया था, जिसमें चैतन्य महाप्रभु को अपने साथियों के साथ कीर्तन करते हुए नाचते दिखाया गया था। तो इससे क्या पता चलता है कि उन्होंने ऐसा जो है दृश्य बनाया है जगन्नाथ जी का, जैसे कि रथ में सवार हूं, क्योंकि 7 फुट ऊंचा आल्टर बना है, और उस आल्टर के नीचे जो है चैतन्य महाप्रभु का चित्र, जो कि भक्तों के साथ नृत्य कर रहे हैं, और हरिदास प्रभुपाद के शिष्य हैं। देखो कितना आश्चर्य है कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन करते हुए नाचते हुए जो चित्र बनाया, तो वो वहां पर लगा दिया जगन्नाथ जी के नीचे। चित्र के पृष्ठ भाग में मद्रासी कपड़े का पर्दा था। चित्र के नीचे जमीन से करीब 3 फुट की ऊंचाई पर एक ताक था, जिस पर मोमबत्तियां रखी थी, और जिसका इस्तेमाल बाद में भगवान जगन्नाथ को अर्पित किए जाने वाले उपहारों के लिए किया जाएगा। प्रभुपाद ने अपना आसन ग्रहण किया, नित्य की भांति उन्होंने कीर्तन कराया, तब भक्तों के साथ जप का एक चक्र पूरा किया। तो प्रभुपाद ने क्या किया, देखिए भगवान जगन्नाथ की स्थापना कितनी सरल ढंग से हो रही है। जैसे हवन होता है ना, तो हवन की जगह उन्होंने क्या कराया, एक माला जप कराई सबके साथ। तो ये जो है ना यज्ञानाम जप यज्ञ, उसमें जप यज्ञ, तो प्रभुपाद ने जप कराया। तो इसमें हवन कुंड बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हवन कुंड बने हुए हैं सबके दो दो, ये जो दो कान हैं ये हवन कुंड नहीं है, तो इसमें जो हवन सामग्री है वो भी कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। हवन सामग्री क्या है? ये शब्द हरे कृष्ण महामंत्र के। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने जो है यज्ञ कराया, एक माला का जाप कराया सबके साथ में। तब उन्होंने हयग्रीव से श्रीमद् भागवत के प्रथम खंड से भगवान चैतन्य के जीवन चरित के अंश सस्वर पढ़वाए। हयग्रीव ने चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र का कुछ अंश पढ़ा, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का दिन था और वो समय भी था। किंतु बहुत से भक्त पूंग रहे थे, बावजूद इसके कि हयग्रीव ऊंचे स्वर में शब्दों पर जोर देकर पढ़ रहा था। यद्यपि प्रभुपाद ध्यान पूर्वक सुन रहे थे और चाहते थे कि दूसरे भी उनके साथ बैठकर भगवान चैतन्य के विषय में सुने, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोग ऊंग रहे हैं तब उन्होंने पाठ बंद करवा दिया और फिर कीर्तन कराया। उसके पश्चात वे सबके साथ लगभग 15 मिनट तक जप करते रहे। तो अगर नींद आए कथा में तो फिर क्या करना चाहिए? कीर्तन करना चाहिए। तो जब प्रभुपाद ने इस तब को नींद आ रही है कथा में, तो उन्होंने फिर कीर्तन कराया और उसके बाद फिर 15 मिनट तक जप कराया। बहुत अच्छा, उन्होंने कहा, हम फिर पढ़ेंगे। देखा, प्रभुपाद को सब विधियां पता है। लोग सो रहे हैं तो उनकी नींद भगाने के लिए कीर्तन कराया, फिर 15 मिनट जप कराया, फिर कहा कि अब हम फिर पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? प्रभुपाद कहते हैं कौन पढ़ेगा? लीलावती का हाथ झक उठा। बहुत अच्छा, उन्होंने लीलावती को अपने पास बैठा लिया और किसी ने उसके सामने माइक्रोफोन रख दिया। लीलावती का पाठ हयग्रीव के गंभीर लहजे से बहुत भिन्न था, लेकिन उसके स्वर में दूसरे प्रकार की विद्वत्ता झलकती थी। उसके संस्कृत शब्दों और वाक्यांशों के सावधानी पूर्वक किए उच्चारण से श्रील प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कई बार टिप्पणी की, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लीलावती गदगद हो गई और हर एक को जागृत रखने के निश्चय के साथ वह मनोयोग पूर्वक पढ़ती गई। तो प्रभुपाद जी जो है प्रसन्न है लीलावती से। क्यों? क्योंकि लीलावती जो पढ़ रही हैं तो साथ साथ वो सबको जगाना भी चाहती हैं। ऐसे नहीं है कि बस सत्यनारायण की कथा पंडित जी अपना पढ़ करके अपनी पोटली जो है ना बांधते हैं और आटा है चावल है वो बांध करके अपना दक्षिणा लेकर के चले जाते हैं, है कि नहीं? तो इस तरह की कथा थोड़ी है। अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे देखना है कि आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, है कि नहीं? तो लीलावती और हयग्रीव में ये अंतर है। हयग्रीव जब पढ़ रहे थे, हालांकि जोर जोर से पढ़ रहे थे, स्पष्ट पढ़ रहे थे, लेकिन भक्त लोग सो रहे थे और वो पढ़ते जा रहे हैं। लीलावती से प्रभुपाद विशेष प्रसन्न है, क्योंकि वो जब पढ़ रही हैं तो सावधानी पूर्वक उच्चारण कर रही हैं संस्कृत के शब्दों और वाक्यांशों को, और और हर एक को जागृत रखने के निश्चय के साथ वो पढ़ रही हैं, जगाने का भी प्रयास कर रहे हैं। उस संध्या बेला में भक्तों और हिप्पी अतिथियों से कमरा खचाखच भर गया। प्रभुपाद उपस्थित थे और सबकी चित्तवृत्ति में श्रद्धा और उल्लास था। ये एक विशेष अवसर था। सद्या निर्मित विग्रह, सद्या निर्मित मतलब हरि बोल, सो रहे हो? सद्या निर्मित का अर्थ है अभी हाल में बने हुए, कहीं से मंगाए नहीं गए बल्कि वहीं श्याम सुंदर के द्वारा बनाए गए थे। यह निर्मित विग्रह अपने रेड वुड शेल्फ पर अब स्थित थे और उनके ऊपर केसरिया रंग का चंदोबा टंगा था। सभी लोग उनको देख रहे थे, उनके अंग प्रत्यंग तीव्र प्रकाश से आलोकित थे। वे वस्त्र या आभूषणों से सुसज्जित नहीं थे बल्कि चमकीले श्याम, रक्त, श्वेत, हरित, पीले और नीले रंगों से अभी अभी उनका अनुरंजन किया गया था। तो यहाँ सबसे पहला जो जगन्नाथ जी का मंदिर जो स्थापित हो रहा है, तो उसमें जगन्नाथ जी को वस्त्र नहीं पहनाए गए हैं। देखो ना प्रभुपाद जी कैसे लोगों के बीच में है, जो बिल्कुल जो है कोई संस्कृति ही नहीं, वे कुछ नहीं जानते हैं, है कि नहीं। तो कपड़ा नहीं पहनाया है जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदेव को, लेकिन कई रंगों से जो है ना उनको सजाया गया है। चमकीले रंग है, एक तो श्याम रंग है, एक रक्त यानी लाल रंग, सफेद रंग, हरा रंग, पीला रंग और नीला रंग, इन रंगों से रंगा गया है जगन्नाथ जी को। और जगन्नाथ जी मुस्कुरा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद भी उनकी ऊंची वेदी पर दृष्टि टिकाए हुए उनका अवलोकन कर रहे थे। प्रभुपाद ने वैदिक साहित्य में वर्णित चार सामाजिक और चार आध्यात्मिक अवस्थाओं पर भाषण किया। चार सामाजिक विभाजन और चार आध्यात्मिक विभाजन प्रभुपाद ने व्याख्यान दिया, क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत जो है ना जो सरल बातें हैं वो समझाना चाहते हैं, जो बहुत जरूरी है। चार आध्यात्मिक विभाजन क्या है मानव समाज के, चार आध्यात्मिक विभाजन, चार आध्यात्मिक विभाजन है ब्रह्मचर्य और गार्हस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास, और चार सामाजिक विभाजन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन पर भाषण दिया। उन्होंने बताया कि अपने गुण और कर्म के अनुसार हर व्यक्ति का एक स्वाभाविक धर्म होता है, किंतु उस धर्म का अंतिम लक्ष्य उन्होंने कहा परमात्मा को संतुष्ट करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई नीच जाति में या गरीब पैदा हुआ है। तो प्रभुपाद ने क्या भाषण दिया कि नीच और जो है ना नीच और गरीब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान जो है दृष्टि, भगवान की दृष्टि कैसी होती है कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है। आध्यात्मिक विकास का संबंध आपकी प्रतिभा से है, आपकी क्षमता से है, आपके कार्य से है, जिसमें आप परमात्मा को संतुष्ट करते हैं। प्रभुपाद ने श्रीधर का उदाहरण दिया, जो भगवान चैतन्य का एक गरीब भक्त था। वो हर दिन 5 सेंट से कम कमाता था। तो प्रभुपाद उनकी भाषा में बोल रहे हैं 5 सेंट से कम, मतलब यहां की भाषा में कितना था, 4 पैसा, 4 पैसा था ना, 4 पैसे उनकी आमदनी थी, तो 2 पैसा वो गंगा जी की सेवा में लगाते थे और 2 पैसे में अपना निर्वाह करते थे। इस पर भी वो अपनी कमाई का आधा भाग गंगा जी की आराधना में लगा देता था, है ना। तो ये है महानता। यदि कोई अमीर है तो उसे भी अपनी संपत्ति का आधा भगवान की सेवा में अर्पित करना चाहिए। भगवान इस प्रकार से समता देखते हैं कि किसी व्यक्ति की आमदनी अगर 10 लाख है तो 5 लाख रुपया भगवान की सेवा में लगाए, और किसी व्यक्ति की आमदनी 10 पैसा है तो 5 पैसा भगवान की सेवा में लगाता है। तो भगवान की दृष्टि में दोनों क्या है, बराबर। भगवान कहते हैं देखो दोनों 50% दे रहे हैं, दोनों दोनों मेरे अच्छे भक्त हैं, है ना। तो ये घटना ऐसी है, बहुलाश नाम के जनक थे, ये सभी आत्मज्ञानी और शुद्ध भक्त राजा थे, सब सब जनक कहलाते थे। तो भगवान उनके महल में गए और एक निर्धन भक्त के भी घर में गए, वो कौन था, श्रुतदेव नाम का ब्राह्मण था, वो निर्धन था श्रुतदेव, है दोनों के घर में एक साथ गए, है ना, दोनों शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अर्पित किया हुआ है भगवान के चरणों में। वो राजा है और वो जो है ना भिखारी है, वो भिक्षावृत्ति करता है, ब्राह्मण है, लेकिन दोनों जो है ना शुद्ध भक्त हैं और दोनों के घर में एक साथ भगवान गए। तो इस तरह से भगवान जो है समान होते हैं, कोई निर्धन और धनी का विचार नहीं करते भगवान। तो प्रभुपाद आगे बोलते हैं, प्रभुपाद ने रूप गोस्वामी का दृष्टांत दिया, जिन्होंने अपनी संपत्ति का 50% कृष्ण भावनामृत के लिए दे दिया। हाँ, शुभ गोस्वामी का जो जीवन चरित्र है उसमें आता है कि उन्होंने 4 हिस्से किए। हाँ, उनके पास जितनी संपत्ति थी उसके 4 हिस्से किए, तो 2 हिस्से तो क्या किए, साधु संतों की सेवा में लगाया, है ना, 50% कृष्ण भावनामृत के लिए दिया, और 25% यानी 1 हिस्सा अपने परिवार वालों को दिया, और शेष 25% आपातकाल के लिए रखा। तो किसी सेठ को दे दिया था, सनातन गोस्वामी को सूचना दी थी कि कोई आपत्ति आए, कुछ संकट आए तो उस पैसे का इस्तेमाल कर लेना। तो सनातन गोस्वामी ने वो पैसा फिर निकाल करके और जेल से छूटे, जेलर को उन्होंने रिश्वत दी और किसी प्रकार से जेल से छूट करके चैतन्य महाप्रभु के पास गए। एकाएक प्रभुपाद उस धन के विषय में बोलने लगे जिसे उनके शिष्यों ने न्यूयॉर्क में गंवा दिया था और 25% अपने लिए रखा, जिसमें आपातकाल में, क्योंकि जो ही धन मेरे हाथ से निकल जाता है मेरा बस नहीं रह जाता। हाल ही में हमने $6,000 गरवी दिए हैं, यही नहीं न्यूयॉर्क में, इसलिए जो ही चेक हाथ से निकला तो वह गया, वो गया। हाँ, इसलिए कुछ संपत्ति अपनी होनी चाहिए सुरक्षित, जो कि क्योंकि जो हाथ में है पैसा वो जा सकता है। तो प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि मिस्टर हाल को $6,000 दे दिए हैं और वो उसको जो ना जब्त करना चाहता है, है ना, तो हमारे पास में कुछ आपत्तिकाल के लिए कुछ है ही नहीं पैसा, है कि नहीं। तो इसलिए हर व्यक्ति को आपत्तिकाल के लिए पैसा रखना चाहिए। प्रभुपाद ने इस सारे से समझाया कि धन किस तरह चिड़िया की भांति हाथ से उड़ जाता है। मिस्टर प्राइस और मूर्ख लड़कों के कष्टप्रद उलझन भरे मामले का और कठिन श्रम से प्राप्त धन के चले जाने का संदर्भ आ जाने से प्रभुपाद क्षण भर के लिए रुक गए, फिर भी अपने व्याख्यान में आगे बढ़े। ये बड़ी चिंता की बात थी। तो प्रभुपाद को चिंता है, मिस्टर प्राइस और मिस्टर हाल ये बड़े बदमाश लोग हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं, भगवान पर, परमेश्वर पर ध्यान लगाना सहज है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, ये कृष्ण है, कृष्ण का विग्रह यहाँ है, कृष्ण का रंग यहाँ है, कृष्ण का मुकुट यहाँ है, कृष्ण का उपदेश यहाँ है, कृष्ण का आदेश यहाँ है, कृष्ण की वाणी यहाँ है, कृष्ण हर वस्तु में है, हर वस्तु कृष्ण है, कोई कठिनाई नहीं है। क्या दिक्कत है? जो निर्विशेषवादी हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है कृष्ण पर ध्यान लगाना। किंतु यदि आप अपना ध्यान निराकार और हृदय स्थित परमात्मा पर ले जाना चाहें, जैसा कि योगी करते हैं, तो वह बहुत कठिन होगा। ये बहुत कठिन है, आप अपना ध्यान निराकार पर केंद्रित नहीं कर सकते। भगवद गीता में कहा गया है, क्लेशोध के तरसते साम अव्यक्ता सक्त चेतसाम। जो परम तत्व के निराकार स्वरूप से आकृष्ट हैं, उनका कार्य बहुत कष्टप्रद है। वह मंत्र जपने, नृत्य करने और खाने पीने की तरह नहीं है। हाँ, निराकार का जो ध्यान करते हैं तो उनको सब जो है ना छोड़ने पड़ते हैं। मतलब सब बोलना बंद करना है, कुछ बोलना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, कुछ देखना नहीं है, कुछ खाना नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन इसमें कितना आसान है, भगवान के साकार विग्रह के ध्यान में कितनी आसानी है कि आप खूब बोलते रहो, खूब सुनते रहो, खूब देखते रहो, बातें करो, नृत्य करो और खाओ पियो, सब कुछ है। ये सब कार्य तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन वो बहुत कष्टप्रद हैं। तो भगवान ने इसको पुष्ट किया है कि इसमें कष्ट है। अभी इस श्लोक मैंने पढ़ा, कौन सा श्लोक है गीता में जिसमें बताया कि निराकार का ध्यान बहुत कष्टदायक है, तो ये आपके हमेशा मुंह में रहना चाहिए, है ना, ये पुष्ट करने के लिए। ये अच्छा शस्त्र है, ये वैष्णवों का अच्छा शस्त्र है, निराकार धारणा को खंडित करने के लिए आपके पास अच्छा शस्त्र होना चाहिए। क्लेशो उधर की तरह से शाम अव्यक्त आसक्त थे, अव्यक्त माने निराकार, निराकार में जो आसक्त हैं तो उनके विधि में बहुत कठिन है, बहुत कष्ट है। तो प्रभुपाद जी ने समझाया ऐसे खा पी नहीं सकते हैं जैसे आनंद के साथ में हम लोग खाते हैं पीते हैं। बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाते पीते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं एक गुलाब जामुन खा करके भगवान के धाम में जाऊंगा और वो करते रहेंगे तपस्या। प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ ये सब कार्य तो बहुत बढ़िया है लेकिन वो बहुत कष्टप्रद है और यदि आप निराकार के चिंतन में लग भी जाएं तो कई जन्मों के कठिन परिश्रम का परिणाम यही होगा कि आपको अंततो गत्वा कृष्ण की शरण में आना पड़ेगा। फिर क्या फायदा, अनेक जन्मों तक कष्ट किया और आखिर आए कहां, वहीं पर आए, तो इतना टाइम क्यों बर्बाद कर रहा हूं, अभी ही क्यों नहीं कृष्ण की शरण ले लेते हैं। जैसे सीधे नाक पकड़ने के बजाय ऐसे नाक पकड़ो तो क्या फायदा है कि नहीं। तो ये भी श्लोक है ऐसा गीता में, कोई बता सकता है कि कई जन्मों के बाद फिर वो कृष्ण की शरण में आते ही हैं। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो कई जन्मों को जो ना बर्बाद किया उन्होंने, इतना कष्ट उठाया और आखिर आए कहां, वहीं पर आए हैं। लौट के बुद्धू घर को आए हैं, लौट के बुद्धू घर को आए है ना। तो इतना घूमते फिरते हैं और फिर आते अपने घर में ना कृष्ण की शरण में आते हैं। तो अच्छा यही है कि बुद्धिमान बन जाओ और कृष्ण की शरण अभी ले लो, तुरंत ले लो। तो प्रभुपाद ने ये बताया कि परिणाम यही हुआ। और इसमें भी है क्लेशो अधिक तरसते शाम अव्यक्ता शक्ति शाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह मद्भिर्वापते। और उसके बाद क्या है, भगवान के ते प्राप्नुवंती मामेव सर्वभूत हेतेरथा। हाँ इसके पहले है ना, ते प्राप्नुवंती मामेव सर्वभूत हेतेरथा। आखिरकार वो मेरी ही प्राप्ति करते हैं, कोई कुछ और उससे ऊंची कोई प्राप्ति थोड़ी करते हैं, आखिर तो उनको आना पड़ेगा मेरे ही चरणों में। श्रील प्रभुपाद श्री भगवान के रूप में कृष्ण का चित्रण करते रहे और इसके लिए भगवत गीता और ब्रह्म संहिता जैसे धर्म ग्रंथों का प्रमाण देते रहे। उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने का पहला पग स्वयं कृष्ण के उपदेशों को श्रवण करना है। किंतु प्रभुपाद ने आगाह किया कि यदि किसी ने कक्षा में ये उपदेश सुने और बाहर जाकर उन्हें भुला दिया तो वह प्रगति नहीं करेगा। आप जो कुछ सुनते हैं उसे औरों को बताना चाहिए। सुनने का मतलब क्या है, ये जो ज्ञान है ये ऐसा धन है जो जितना आप देते हैं उतना बढ़ता है और आप इसको जितना छिपा के रखते हैं उतना खत्म, वो खत्म हो जाएगा। आपने जो सुना है अगर आप नहीं बताते, श्रवण कीर्तन प्रचार अगर नहीं बताते हैं तो वो जो है ना अंदर ही अंदर चला जाएगा। हैं? कैसे कैसे चला जाएगा, जैसे कि क्रैक, कोई बर्तन जिसमें दरार या थोड़ा छेद है तो दूध जो ना पूरा लीक हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से है ना, तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छा बताया कि श्रवण करने का यही मतलब है कि आप दूसरों को बताइए या प्रश्न करना। प्रश्न करने से भी जो है ना श्रवण विधि जो ना होती है। हाँ, और उन्होंने उदाहरण दिया कि किस प्रकार उनके शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु से सुनी बातों को बैक टू गॉड हेड में लिख रहे थे। हाँ, तो प्रभुपाद ने शुरू जब किया था बैक टू गॉड हेड तो खाली वे ही लेखक थे, जितने लेख थे सब प्रभुपाद जी ही लिखते थे और कोई नहीं था, पूरी वो खुद ही लिखते थे और खुद ही टाइप करते थे, फिर वो छापने के लिए देते थे, फिर उसका प्रूफ संशोधन भी करते थे और फिर उन किताबों को प्रतियों को स्वयं बेचते थे और पैसा इकट्ठा करके फिर कागज खरीदते थे। कितने संघर्ष से प्रभुपाद ने बैक टू गॉडहेड शुरू किया था, इन आगे चल करके फिर उनके शिष्य लोग प्रभुपाद के प्रवचन जो सुना करते थे वो बैक टू गॉडहेड में छापते थे। तो ये दूसरों को बताना है। पुस्तकें छापना भी क्या है, कीर्तन है। और ये कीर्तन जो है बृहद मृदंग का नाम दिया प्रभुपाद ने, या भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने इसको बृहद मृदंग का नाम दिया। तो प्रभुपाद कहते हैं और सुनी हुई बातों को दूसरों को बताने या लिखने के लिए व्यक्ति को विचारशील होना पड़ता है। तो श्रवण और मनन और कीर्तन, अगर आपने श्रवण किया है और आप कुछ लिखना चाहते हो उसको, तो आपको फिर मनन करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो श्रवण के साथ मनन, तब आप जो है ना उसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि भागवत सप्ताह में भी धुंधकारी की घटना है कि धुंधकारी ने 7 दिन श्रीमद् भागवत श्रवण किया तो उसके लिए वैकुंठ से विमान आया। और गोकर्ण कहते हैं कि ये क्या, ये कैसा पक्षपात है, इस प्रेत के लिए तो विमान आया वैकुंठ जाने के लिए, और इतने बड़े बड़े श्रोता हैं यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने भी श्रवण किया है, तो जितने श्रोता बैठे उतने विमान आने चाहिए। तो उन्होंने बताया कि श्रवण तो सबने किया है, जिस प्रकार इसने मनन किया है वैसा मनन सबने नहीं किया। और उसने मनन क्यों किया, क्योंकि धुंधकारी प्रेत के रूप में था, वो भूख प्यास का भी कष्ट सहन कर रहा था बहुत ज्यादा। है तो श्रवण से उसका उद्धार होना था, तो वो श्रवण दिन भर श्रवण करता था और रात भर भी जो ना उस बांस के छेद में बैठा हुआ वो मनन करता रहता था। खाया पिया कुछ नहीं, ना सोना ना खाना ना पीना, तो मनन करता रहता है। बाकी लोग जो श्रवण कर रहे थे तो खाते पीते थे, सोते भी थे, तो निकल भी जाता था। तो फिर उन्होंने विष्णु दूतों ने कहा कि चिंता मत करो, इन्होंने जो श्रवण किया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, एक बार दोबारा सप्ताह करो। और उस समय जो है ना देखोगे जितने लोग श्रवण कर रहे हैं उतने ही विमान आएंगे वैकुंठ से। तो फिर दूसरी बार जब सप्ताह किया तो जितने लोगों ने श्रवण किया भागवत उतने ही विमान आए, है ना। तो श्रवण का जो है ना फल कैसे है, वो मनन से होता है, तो विचारशील होना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी ने भी जो है ना अपने शिष्यों को ऐसे महत्वपूर्ण कार्य में लगाया कि जो तुम सुनते हो प्रवचन उसको तुम छापो बैक टू गॉड में। अब छापना है तो हजारों लोगों के हाथ में जाएगी, तो उनको एक एक शब्द सोचना पड़ता है कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, है ना। एक एक वाक्य बनाने में भी उनको विचार करना पड़ता है बहुत ज्यादा, है कि नहीं? तो ये जो है ना विचारशील होना, विचार करना बहुत जरूरी है। आप प्रभुपाद कहते हैं आप कृष्ण के विषय में सुन रहे हैं और आपको विचार करना है तब आप दूसरों को बताएंगे, अन्यथा काम नहीं होगा। अतः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, ठीक है ना, श्रवण करना और कीर्तन करना भी जरूरी है, विचार करना पड़ेगा कि आपने क्या सुना है कि नहीं। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च, और आपको पूजा करनी चाहिए, अतः पूजा के लिए इस विग्रह की आपको जरूरत है। हमें विचार करना है, बोलना है, सुनना है, पूजा करनी है, पूज्यश्च, और क्या ये हमें कभी कभी ही करना चाहिए? नहीं, नित्यता नियमित रूप से, नियमित रूप से। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी श्लोक को समझा रहे हैं, श्रोतव्य कीर्तव्यश्च देह पूज्यश्च नित्यता। तो नित्यता की प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं क्या, प्रतिदिन, प्रतिदिन नियमित रूप से क्या करना है, श्रवण करना है और कीर्तन करना है, ध्यान करना है और पूजा करनी है, नियमित रूप से। नियमित रूप से मतलब प्रतिदिन नियम पूर्वक, यही प्रक्रिया है। इसलिए जो कोई यह प्रक्रिया अपनाता है वह परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत की यही स्पष्ट घोषणा है। आपको बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है प्रभुपाद के, कोई प्रश्न है? अब जब प्रभुपाद के कोई प्रश्न है तो फिर उनको विचारशील होना पड़ता है कि नहीं? कथा के अंत में जब जो वक्ता है वो कहता है कोई प्रश्न है, तो फिर लोगों के दिमाग में एक झटका लगता है कि अरे कोई प्रश्न है तो मैंने क्या सुना, तो फिर वो सोचता है है कि नहीं। तो प्रश्न करने के लिए व्यक्ति को बहुत सोचना पड़ता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कोई प्रश्न है? लेकिन प्रभुपाद के अलावा जितने व्याख्यान होते हैं कहीं आपने देखा है ऐसा पब्लिक में जो है ना कोई जो है ना कहे कि भाई प्रश्न पूछो? नहीं, पब्लिक में भी जो है ना वो प्रश्न पूछने के लिए अनुमति नहीं देते हैं। अगर कोई पूछना भी चाहे तो नहीं पूछ सकता। बल्कि प्रश्न पूछने को ही उन्होंने वो अपराध मानते हैं, अपराध कहते हैं कि कोई प्रश्न अगर पूछ रहा है तो उसको ही अपराध कहते हैं कि प्रश्न नहीं करना चाहिए कभी। अगर कोई प्रश्न करे तो कहेंगे ए चुप, भगवान कहता मैं प्रश्न करता है, भगवान कहता हमें कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या होगा? खत्म। और उससे क्या होता है? भगवान कहते हैं अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशय आत्मा विनश्यति, नष्ट हो जाता है। एक तो अज्ञानी मतलब जो नहीं सुनता है नहीं जानता है वो अश्रद्धालु, और तीसरा संशय आत्मा, संशय है तो वो भी नष्ट हो जाता है कि नहीं। तो संशय दूर करना बहुत जरूरी है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कोई प्रश्न? एक किशोर ने हाथ उठाया और गंभीरता पूर्वक कहने लगा, अच्छा तो आपने बताया कि हम परम विधान का अनुगमन कैसे करें, हम आत्मा के आदेश का पालन कैसे करें, या आप आपका परमात्मा जो कुछ आदेश दे, मेरा तात्पर्य जो कुछ वो कहे, मेरा तात्पर्य यदि आप पूरा ध्यान लगाएं तो आप अनुभव करते हैं कि आप आपको कुछ करना चाहिए। उसने प्रश्न किया है, वो ठीक से पूछ नहीं पा रहा है लेकिन उसने अपनी बात को फिर भी मतलब प्रकट कर दिया ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कुछ नहीं वरन वास्तविक चीज। तो किशोर कहता है हाँ मेरा तात्पर्य है कि उस तरह है प्रभुपाद, इसलिए कुछ का प्रश्न नहीं है। किशोर कहता है हाँ मैं समझता हूँ प्रभुपाद, कुछ कुछ अस्पष्ट है, तुम्हें बताना है कि भाई कुछ क्या है। तो किशोर कहता है हाँ तो हम कहें कि, प्रभुपाद कहते हैं तुम उसे व्यक्त नहीं कर सकते, इसका अर्थ है कि तुम नहीं जानते, इसलिए हमें सीखना है, यही प्रक्रिया है, मैं उस प्रक्रिया के बारे में बता रहा हूँ। यदि तुम्हें परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करना है तो पहली बात श्रद्धा की है। तो उस युवक ने जब प्रश्न किया तो उसने प्रश्न क्या किया कि भाई हृदय के परमात्मा है, उनसे आपको उनके इच्छा के अनुसार काम करना है, तो वो कुछ क्या है, कैसे पता चलेगा? तो फिर प्रभुपाद कहते हैं कि वो कुछ नहीं है, वास्तविक चीज है। वो पता चलने कैसे? आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। कैसे? श्रवण के द्वारा, श्रवण के द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तो पहली बात श्रद्धा की है, उसके बाद चिंतन आता है, तत्पश्चात तुम्हें भक्त बनना है और प्रामाणिक स्रोतों से सुनना है, यही विभिन्न उपाय हैं। और जब तुम ब्रह्म स्तर से परमात्मा स्तर और फिर परम ईश्वर के स्तर पर पहुंचकर चरम ज्ञान प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हारा कर्तव्य परम ईश्वर को प्रसन्न करना रह जाएगा। तो प्रभुपाद क्या बताते हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा आप पहले ब्रह्म साक्षात्कार करोगे, ठीक है, उसके बाद परमात्मा साक्षात्कार, उसके बाद भगवत साक्षात्कार है? तो जब भगवत साक्षात्कार के धरातल पर आप आ जाएंगे तो फिर आप समझ पाओगे कि भगवान आपसे क्या चाहते हैं, आपको क्या करना है। कोई संदेह नहीं रह जाएगा कि कुछ 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 नहीं, वास्तविक आपको पता चलेगा। तुम्हारे क्रियाशील जीवन की ही पूर्णता है, यही प्रक्रियाएं हैं। निष्कर्ष यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य परम ईश्वर को प्रसन्न करना है, इससे अंतर नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति क्या है। और हम उन्हें प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, हमें उनके विषय में सुनना है, उनके विषय में बात करना है, उनके विषय में सोचना है, उनकी पूजा आराधना करनी है, और ये सब नित्य नियमित रूप से करना है। कितनी बातें प्रभुपाद बताते हैं नियमित रूप से करने के लिए, क्या क्या प्रभुपाद ने बताया है? सबसे पहले क्या?
श्रवण करना है, कीर्तन करना है, पूजन करना है।
सबसे पहले श्रवण करना और फिर उनके बारे में बात करना और फिर उनके बारे में सोचना और फिर पूजा आराधना करना। और नियमित रूप से करना है, इससे तुम्हारी सहायता होगी। किंतु यदि तुम पूजा नहीं करते, चिंतन नहीं करते, कुछ श्रवण नहीं करते, कुछ नहीं सुनाते, केवल लगातार कुछ कुछ के बारे में सोचते रहते हो, तो वह कुछ भगवान नहीं होता। तो वो किशोर प्रश्न करता है, मेरा तात्पर्य है, अच्छा आप जानते हैं मैं युवक हूं, मुझे पता नहीं कि मैं कुछ कहना चाहता था, मैं नहीं जानता कि मैं क्या। वो कह रहा है, तो प्रभुपाद कहते हैं नहीं जानता, वही मैं बता रहा हूं, उसे तुम्हें इन तरीकों से जानना है, हम सभी नहीं जानने वाले हैं, इसलिए हमें जानना है, ये तरीका है। तो प्रभुपाद ने कितना अच्छा उत्तर दिया, वो कहता है मैं नहीं जानता, तो प्रभुपाद कहते हैं कि तुम्हें जानना होगा। फिर एक युवती ने प्रश्न किया, क्योंकि हम परम विधान अभी नहीं जानते, क्योंकि हम अल्प वयस्क हैं और इस क्षेत्र में नए हैं, इसलिए हम इसके बारे में बात कैसे कर सकते हैं। तो प्रभुपाद फिर क्या कहते हैं, इसलिए तुम्हें सुनना है, पहली चीज है श्रोतव्यः, तुम्हें सुनना है, जब तक तुम सुनते नहीं तुम बात कैसे कर सकते हो, इसलिए हम तुम्हें सुनने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं, सुनो और तब बात कर सकोगे, तब चिंतन कर सकोगे, हम सभी सुविधाएं दे रहे हैं, सुनने की, बोलने की, सोचने की और पूजा आराधना करने की, संघ का यही काम है। जब तक तुम सुनोगे नहीं बोलोगे कैसे, पहला काम है श्रोतव्य, तब कीर्तितव्यश्च, ध्येय पूज्यश्च नित्यता, यही क्रम है, तुम्हें श्रवण करना है और श्रवण करने पर दोहराना है, जप करना है, तदनंतर तुम्हें चिंतन करना है, तुम्हें पूजा आराधना करनी है, यही क्रम है। अभी और आप लोग सुनिए, अभी श्रवण करने की बात चल रही है, श्रवण करो अभी। अब उपेंद्र ने प्रश्न किया, स्वामी जी तो हमें श्रवण करना है, मैं समझ गया, पर क्या हमें बोलना है, या लंबे समय तक हमें श्रवण करना है तब बोलना है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्या प्रश्न है, या लंबे समय तक हमें श्रवण करना है तब बोलना है? प्रभुपाद कहते हैं नहीं, लंबे समय तक क्यों, मान लो कि तुम दो पंक्तियां सुनते हो, उन दो पंक्तियों को दोहराओ, और हर चीज के अलावा तुम हरे कृष्ण सुनते हो, इसलिए हरे कृष्ण का जप कर सकते हो, इसमें क्या कठिनाई है? श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, तुम्हें सुनना और जपना है, अतः यदि तुम उन सभी प्रकरणों को याद नहीं रख सकते जिनके संबंध में हम भगवद गीता या श्रीमद् भागवत से सुनाते हैं, तो कम से कम तुम हरे कृष्ण याद रख सकते हो, इसलिए ये सबसे आसान तरीका है, हरे कृष्ण सुनो और हरे कृष्ण जपो, अन्य चीजें अपने आप आ जाएंगी। अस्तु, ये हर एक के लिए संभव है, बच्चा भी हरे कृष्ण की आवृत्ति कर सकता है। कितना अच्छा प्रैक्टिकल, एक बच्चा भी बोल सकता है। कठिनाई क्या है? हरे कृष्ण सुनो और हरे कृष्ण जपो, हम तुम्हें कोई कष्टप्रद या कठिन काम नहीं दे रहे हैं, तब हर चीज अपने आप आएगी, हम तुम्हें हर वस्तु दे रहे हैं, लेकिन यदि तुम शुरू में समझते हो कि ये कठिन है, तो तुम केवल ये कर सकते हो, ये बहुत अच्छा है, हरे कृष्ण जपो, तुम वस्तुतः ये कर रहे हो, सुनना और जपना, ये प्रक्रिया तुम्हें सहायता देगी। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का मूलभूत सिद्धांत है, बिना सुने हम केवल मनगढ़ंत करेंगे, अपना समय नष्ट करेंगे और लोगों को दिग्भ्रमित करेंगे, हमें प्रामाणिक स्रोतों से सुनना है। श्रील प्रभुपाद रुक गए, दार्शनिक वार्ता जो लगभग पौन घंटे तक चलती रही काफी जटिल थी, वे थके नहीं थे और वार्ता आगे जारी रख सकते थे, किंतु अब उन्हें श्री विग्रह की स्थापना करनी थी, आध्यात्मिक जीवन के लिए जरूरी हर वस्तु वहां मौजूद थी। क्या क्या चीजें? मंदिर, भक्तजन, ग्रंथ, श्री विग्रह, प्रसाद। आध्यात्मिक जीवन के लिए जो जरूरी चीजें हैं क्या क्या हैं? मंदिर, भक्तजन और श्री विग्रह, प्रसाद और ग्रंथ। वे चाहते थे कि वहां एकत्र युवाजन उसका लाभ उठाएं। वे पशुओं की तरह क्यों रहें और अस्पष्ट कुछ को टटोलते हुए आध्यात्मिक जीवन के बारे में सोचते रहें कि कुछ होता है कुछ होता है, स्पष्ट बिल्कुल जो स्पष्ट नहीं है क्यों टटोलते रहते हैं। तो सीधी बात है, असली चीज हरे कृष्ण है। अगर आप कुछ नहीं समझते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो हरे कृष्ण बोलो। उन्हें कृष्ण कृपा का लाभ उठाना चाहिए और जीवन को सफल और आनंददायक बनाना चाहिए, और इस निमित्त प्रभुपाद उनके अथक सेवक थे। क्या मतलब? प्रभुपाद अथक सेवक थे उनके। किनके? प्रभुपाद उनके अथक सेवक थे। वास्तव में प्रभुपाद ने सेवा भावना दी कि इनको मुझे भक्त बनाना है। तो प्रभुपाद कहते हैं, तो हयग्रीव यहां आओ। प्रभुपाद ने एक थाली में भक्तों से एक बड़ी बत्ती सजवाई। जिस समारोह की योजना उन्होंने बनाई थी वह बहुत सादा था। ये जो भक्त हैं वो बत्ती बनाना नहीं जानते थे, इसलिए मोमबत्ती, देखो मोमबत्ती से शुरू कर। जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं कि मोमबत्ती से भी आरती कोई करे तो वो स्वीकार कर लेंगे। तो एक बड़ी मोमबत्ती जो है थाली में सजाई, सजाई मतलब इस तरह से कि मतलब हिले डुले नहीं, वो घुमा सके आरती। तो सबसे पहला जो जगन्नाथ जी का मंदिर था, इस प्रकार की पूजा है। राधा कृष्ण की पूजा नहीं हो सकती ना। प्रभुपाद ने कहा कि राधा कृष्ण की पूजा में विधि विधानों का बहुत कठोरता से पालन करना पड़ेगा, लेकिन जगन्नाथ जी की जो है ना पूजा कितनी आसान है, जगन्नाथ जी पूजा स्वीकार कर लेंगे। तो मोमबत्ती से जो है ना प्रभुपाद जी ने आरती सजवाई। जिस समारोह की योजना उन्होंने बनाई थी वो बहुत सादा था। देखो हवन भी जो कराया वो कैसे कराया? हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला का जाप कराया, ये हवन है, और आरती है मोमबत्ती से। भक्तों और अतिथियों को एक के बाद एक आकर भगवान जगन्नाथ के श्री विग्रहों के सामने वृत्ताकार आरती करनी थी। प्रभुपाद बताए वृत्ताकार आरती, ऐसे घुमाना है आरती और बत्ती को जलाना चाहिए, श्रील प्रभुपाद ने कहा। और जब कीर्तन हो रहा हो तो किसी को श्री विग्रह के सामने इस तरह करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने अपना हाथ घुमाया इस तरह से कि थाली को लेकर के ऐसे घुमाओ जगन्नाथ जी के सामने। हाँ, प्रभुपाद ने अपना हाथ घुमाया और कहा, देख रहे हो कीर्तन चलता रहेगा और एक एक करके आरती मतलब जो थाली है वो घुमाना है। हयग्रीव बोले हाँ हाँ। तो प्रभुपाद कहते हैं हाँ कीर्तन के साथ, और जब एक व्यक्ति थक जाए तो उसे दूसरे व्यक्ति को दे देना चाहिए, बहुत लंबा कार्यक्रम है, तो जब हाथ थक जाए तो दूसरे को दे दो। लगातार ये थाली है वो घुमाते रहो जगन्नाथ जी के सामने और कीर्तन करते रहो। जब वह थक जाए तो उसे अन्य को दे देना चाहिए, जब तक कीर्तन चले ऐसा ही करना है, कीर्तन के साथ ऐसे अभी करना है, समझ रहे हो? प्रभुपाद समझा रहे हैं, समझ रहे हो? हाँ तुम शुरू करो और जब तुम थक जाओ तो दूसरे को दे दो, इस तरह से चलाते रहना है। ये उद्घाटन समारोह चला। श्रील प्रभुपाद ने अपने आसन से हयग्रीव को हाथ में जल्दी बत्ती के लिए श्री विग्रह के निकट पहुंचने की विधि बताई। कुछ लड़कियां अधीर प्रत्याशा में ही करने लगी श्री विग्रह के सामने। श्रील प्रभुपाद ने कहा, ठीक है अच्छा हो अब कीर्तन शुरू किया जाए। प्रभुपाद करताल बजाने और उस लोकप्रिय धुन के साथ हरे कृष्ण मंत्र गाने लगे जिसका परिचय उन्होंने अमेरिका में कराया था। वो लोकप्रिय ध्वनि क्या है हरे कृष्ण मंत्र की? तो प्रभुपाद करताल बजाने और उस लोकप्रिय धुन के साथ हरे कृष्ण मंत्र गाने लगे जिसका परिचय उन्होंने अमेरिका में कराया था। ठीक सामने वे पुकार उठे हयग्रीव को श्री विग्रह के सामने खड़े होने के लिए संकेत करते हुए। ठीक सामने, अब वो जो लड़कियां थी वो बहुत चकित हो रही थी कि ठीक सामने कैसे जाएं, मतलब उनको बड़ा अजीब लग रहा था कि हम लोग तो इतने अशुद्ध हैं, हिप्पी लोग हैं, और ठीक सामने वहां प्रभुपाद कह रहे हैं ये तो बहुत मतलब बड़ा काम हो गया है, बहुत बड़ा जो है अपराध कहीं ना हो जाए, इसलिए वो थोड़ा चकित थे। भक्तगण और अतिथि अपने पैरों पर खड़े होकर नृत्य करने लगे। उनकी बाहें ऊपर को उठी हुई थीं और वे लय के साथ आगे पीछे झूम रहे थे और स्त्री विग्रहों की चमकती हुई मूर्तियों को देखते हुए कीर्तन कर रहे थे। चंदोबा के नीचे हरा लाल और पीला प्रकाश बारी बारी से कौंध रहा था, जिससे भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम के असाधारण नेत्र प्रदीप्त हो उठते थे। ये देखो भक्तों ने कितनी सी व्यवस्था की है, जब प्रकाश बदलता है, प्रकाश का रंग बदलता है भगवान के स्त्री विग्रह में, तो विशेष जो ना भगवान का भी उत्साह दिखाई देता है। मुकुंद जिसने प्रकाश की व्यवस्था की थी मुस्कराया और उसने स्वामी जी की स्वीकृति की आशा में उनकी ओर देखा। प्रभुपाद ने सिर हिलाया और वे उत्साह पूर्वक हरे कृष्ण गाने में लगे रहे। मुकुंद ये कौन है? मुकुंद गोस्वामी। तो मुकुंद गोस्वामी को लग रहा था कि मैंने जो किया है ये प्रभुपाद के विचार से कहां तक ठीक है। हा? क्या किया था मुकुंद ने? ये सारे में उन्होंने पूछ भी लिया, ये सारे में प्रभुपाद ने बता भी दिया, है ना। प्रभुपाद ने स्वीकृति में सिर हिलाया और उत्साह पूर्वक हरे कृष्ण गाने में लगे रहे। युवा हिप्पी गान और नृत्य में उत्साह दिखा रहे थे। वे जानते थे कि कीर्तन आम तौर पर एक घंटा चलता है। कुछ की समझ में स्वामी जी की बात आ गई थी जब उन्होंने मन को परमेश्वर के साकार रूप पर केंद्रित करने को कहा था। उनकी समझ में वह बात भी आ गई थी जब उन्होंने स्त्री विग्रहों की ओर देखकर कहा था कृष्ण यहाँ है। दूसरों की समझ में बात नहीं आई थी, वे यही समझते थे कि हरे कृष्ण गाना और फूलों और धूप के धुएं से आच्छादित मुस्कुराते विशाल नेत्र श्री विग्रहों को देखना ही महान और आनंदप्रद कार्य है। तो कुछ लोग तो इतनी समझे कि भाई इसमें आनंद आ रहा है हमको, हा? लेकिन इससे ज्यादा नहीं समझे कि कृष्ण है साक्षात, वो नहीं समझ रहे। जब एक के बाद दूसरा भक्त भगवान की आरती कर रहा था तो प्रभुपाद प्रसन्नता पूर्वक इसे देख रहे थे। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पारसार्थी ललिता विशाखा की, श्री श्री गोणताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, हरे कृष्णा। धन्यवाद।